महाराज के चरणों में सादर वंदन, उनके मंगल आशीर्वाद प्रयोजन की कामना सादर।
सागर सुधीर जो विद्यादि सागर सुधीर तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडर मल जी ने लिखा है, जब तक व्यक्ति की मंद कषाय नहीं होती तब तक व्यक्ति को तत्व चिंतन की बात नहीं रुचती, और जब तक तत्व चिंतन व्यक्ति नहीं करता तब तक उसे विरक्ति नहीं होती, और बिना विरक्ति के वो संसार से पार नहीं होती। पिछले दिनों हमने चारों कषायों की तासीर समझी। कषायों की मंदता के बाद ही जो सच्चाई है, जीवन की वास्तविकता है, तत्व का स्वरूप है, वो प्रतिभासित होता है। मेरा सोचना है कि वो भी हमें हुआ होगा। और कसौटी है आज विरक्ति, कसौटी है कि आपने सच्चाई को कितना पाया है। जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान लेता है, संसार शरीर और भोग इन तीनों की वास्तविकता को जान लेने वाला इनसे विरक्त हुए बिना नहीं रहता है। और अगर वो इन सब के तासीर को जानने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी विरक्त नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसने सच्चाई को जाना नहीं है। संयम जीवन में एक बंधन की तरह, एक अनुशासन की तरह हम स्वीकार करते हैं, पर संयम तो बिना संयम के तो आदमी रह भी नहीं सकता। इतनी देर से यहां बैठे हैं, संयम ही तो है। रास्ते में चले जाते हैं, मन करता है कोई व्यक्ति बाजू में जा रहा उसको धक्का दे दें, नहीं देते क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, इतना संयम तो रखते हैं। चार रोटियां खा ली हैं, पांचवी खाएंगे उल्टी हो जाएगी, नहीं खाते हैं, एक रोटी कम खा लेते हैं। किसी के यहाँ गए हैं और उनके यहाँ पर बहुत मन कर रहा है कि फलानी जो जुटा के खा लें, लेकिन लोग क्या कहेंगे, संयम रख लेते हैं। ऐसा तो हम सैकड़ों दफे करते हैं। बिना संयम के तो आदमी एक पग भी नहीं रख सकता है। तो फिर ऐसा संयम जब हमारे जीवन में है तो किस संयम की बात करनी है, उत्तम संयम की बात करनी है। उत्तम संयम कोई अलग चीज है। जीवन में अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन का नियंत्रण कर लेना, अपनी आंखों की रोशनी कम न हो जाए इसलिए और बहुत सारे जो डॉक्टर ने उपाय बताए हैं वो कर लेना, अपने इंद्रियों के विषयों के पोषण कर सकने के लिए इंद्रियों की घटती हुई शक्ति को देख करके इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेता है। बस इतना ही तो उत्तम संयम और सामान्य संयम में फर्क है कि एक में अभिप्राय संसार का है और दूसरे में अभिप्राय अपने आत्म कल्याण का है। जहां छोटी सी चीज भी जो कि अपने आत्म कल्याण में बाधक बनती है उसका हमने नियमन कर लिया है, उसका अभी त्याग नहीं किया है, उसका सिर्फ नियमन कर लिया है, उसमें हमने लिमिटेशन कर लिया है, इतना अगर हमने किया है तो वो संयम हमारे भीतर है। हम चीजों के ग्रहण करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं है, ये हमारा संयम है। संयम में जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सारी चीजें खाने का मन है तो वो कहता खाऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, ये नियमन हो गया, ये संयमन हो गया, बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा इसकी बात तो कल करेंगे, वो तपस्या कहलाएगी। लेकिन तपस्या से पहले अपने ऊपर अपने मन वचन और कर्म इन सब की पवित्रता बनाए रखना, व्रत और समिति का पालन करना और दंडक चाहे इंद्रिय जय तीनों मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को रोक लेना और इंद्रियों का नियमन कर लेना, इंद्रिय के विषयों का नियमन कर लेना, ये संयम कहलाता है। व्रत समिति का पालन तो मुनिजन करते हैं, इंद्रिय नियमन भी मुनिजन करते हैं, तीनों मन वचन काय को दंड माना गया है जो कि हमारे जीवन को दंडित करते हैं। मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति हमारे जीवन को दंड के समान दंडित करती है, इसलिए उन्हें दंड कहा गया, दंडक चाहे तीनों का, तीनों के होने वाली पाप प्रकृति के त्याग भी मुनिजन ही करते हैं, पर श्रापक आंशिक रूप से इन सब चीजों के लिए करे ये उसका संयम कहता है। यम पर विजय प्राप्त करने के लिए संयम किया जाता है, एक संयम की परिभाषा ये है। और सम्यक यमः संयमः, समीचीन रूप से अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। अनादिकाल के संस्कार किस बात के हैं? पांचों इंद्रिय के विषय और मन, इतने ही तो संस्कार लेकर के आए हुए हैं हम, इन संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। लेकिन इन संस्कारों पर विजय प्राप्त करना भयवश नहीं, प्रीतिवश भी नहीं, द्वेष वश भी नहीं, ये चीज अच्छी नहीं लगती है नहीं खाऊंगा, ये चीज अच्छी नहीं लगती है अपने जीवन में ग्रहण नहीं करूंगा, ये तो बहुत आसान है। द्वेष वश भी नहीं, राग वश भी नहीं, कई बार राग वश भी त्याग कर देते हैं, मेरा मित्र इस चीज को पसंद नहीं करेगा इसलिए इस चीज को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मित्र से स्नेह है, तो स्नेह के वशीभूत होकर भी हम त्याग कर देते हैं। भय वश भी हम त्याग कर देते, रोग व्याधि ना हो जाए इसलिए भी, वो संयम नहीं कहलाएगा। संयम वो कहलाएगा जहां अपने संस्कारों को उस समय हम नियंत्रित करते हैं क्योंकि वो हमारे आत्मानुशासन में बाधक होते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्म विकास में बाधक होते हैं, वो संयम कहलाता है। तो ऐसे संयम को ही उत्तम संयम माना गया और ये संयम गुरु की साक्षी पूर्वक लिया जाना चाहिए और अपनी आत्म शक्ति को पहचान करके लिया जाना चाहिए। अपनी शक्ति का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं चाहिए, देखा देखी भी नहीं होनी चाहिए और ले लेने के बाद पब्लिक ओपिनियन में भी नहीं पड़ना चाहिए। इतनी बातों का संयम के साथ ध्यान रखना आवश्यक। गुरु की साक्षी की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि एक सहारा रहेगा कि किसी के सामने जाकर के मैंने सौगंध ली है कि मैं ऐसा करूंगा और गुरु जानते हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना है। जैसे माँ जानती है, छोटा वाला बेटा तो मांगता है कि वो बड़े भैया को जो आपने रबड़ी दी है और रसगुल्ला दिया और हमको पानी डाल करके दूध दे रहा हो सिवाय बेईमानी के और हमारे साथ आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम पचा नहीं पाओगे, रबड़ी तो ठीक है मलाई भी नहीं डालेंगे हम, पानी में दूध मिला के पिलाएंगे क्योंकि पच नहीं पाएगा। तो जैसे माँ जो है पालन करते समय बेटे को उसकी अपनी तासीर और उसकी अपनी शक्ति के मुताबिक जो चीज देनी है देती, उसी प्रकार गुरु भी जानते हैं कि सामने वाला मांगेगा तो अधिक ही मांगेगा पर देना नहीं है उसे, उतना ही देना है, उसकी शक्ति को देख करके देना है। इसलिए गुरु की साक्षी आवश्यक है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि अहंकार वश कोई व्रत नहीं लिया जाता, व्रत तो विनम्रता से लिया जाता है। ये अहंकार है कि क्यों झुकूं, किसी के अंडर में क्यों लूं, हमारे अंदर अपने आप ले लेंगे हम, क्या हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हम अपने आप भी ले सकते हैं, क्या जरूरत है कि किसी के चरणों में झुक करके लें, तो ले लीजिएगा, वैसा भी लिया जा सकता है। लेकिन किसी के साथ चलना, मैंने आपसे कहा था, बहुत आसान नहीं है। अकेले चलना बहुत आसान है, मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है, जब चाहे तब मनाए तो तोड़ दो। कौन किसी से कहा था, कौन यहाँ पूछने आता है? किसी के साथ चलो तो थोड़ी दिक्कत होती, उसका मन रखना पड़ता, लेकिन किसी के पीछे सिर झुका के चुपचाप चलना हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की साक्षी पूर्वक अप सख्यम, पर सख्यम, देवता सख्यम, गुरु सख्यम, चार की साक्षी पूर्वक आत्मा को साक्षी मान करके कोई भी नियम अपने जीवन में लेना। पर की साक्षी पूर्वक चार लोगों को बता देना कि कभी कोई तोड़ने का मेरा मन हो तो संभाल लेना, हो सकता है कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा। घर के लोगों को बता दिया कि मैं सोचता हूँ कि आज ऐसा ऐसा करूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी सद्भावना चाहिए, उसमें पर की साक्षी भी चाहिए। और अब देवता सखियम, जिसको हमने ईश्वर माना, जिसको हमने अपना, जिसने इन व्रतों से अपने जीवन को महान बनाया है, उसके चरणों में उसका स्मरण भी ना करेंगे, उसके प्रति अपना डिवोशन भी नहीं, अपना समर्पण भी व्यक्त नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, चाहे मंदिर में जाकर के या कि घर में ही, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्षण ऐसा मन बने कि अब नहीं खाऊंगा, तो मंदिर में जाकर के कैसे सौगंध लेंगे, तो भगवान को याद कर लिया। और किसी एक को तो आपको गुरु मानना ही पड़ेगा। फैमिली प्रीस्ट की बात एक दिन हुई थी, फैमिली डॉक्टर हुआ करता है लेकिन फैमिली प्रीस्ट आज तक किसी ने नहीं बनाया। किसी फॉरेनर ने कहा था श्रवण वेलकोल के अंदर कि आप लोग फैमिली डॉक्टर तो बनाते हैं जिससे कि अपने शरीर की व्याधियों का इलाज करवाते हैं, लेकिन अपने आत्मा की व्याधियों का इलाज करवाने के लिए कोई आपको फैमिली प्रीस्ट है, कोई फैमिली का गुरु है जिससे कि आप अपने आत्म कल्याण की दो बातें सीखते हैं? तो उस गुरु की साक्षी पूर्वक, साक्षी से मतलब है उसकी स्मृति से, अगर वो सम्मुख है तो सम्मुख पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं है तो उसका स्मरण करके वहीं के वहीं ले लेंगे, ताकि गुंजाइश रहे कि कल के दिन अगर कोई टूट फूट हो जाती, कोई अतिचार लग जाता है, या कि कदाचित कर्म के उदय से व्रत भंग भी हो जाता है, संयम से हम विचलित हो जाते हैं, संयम में गिर जाते हैं, तो जाके निवेदन कर सकें कि मेरे से ऐसा हुआ, कोई मेरे आत्मा की विशुद्धि के लिए कुछ उपाय बताइए, प्रायश्चित दे दीजिए। वरना अपने मन से लेने के बाद तो किससे प्रायश्चित मांगिएगा, अपना मन अपने को प्रायश्चित देने के लिए तैयार थोड़ी होता है। आवश्यक है इसलिए गुरु की साक्षी पूर्वक। मुझे याद है नैनागिर में सन 78 में हमसे बड़े आचार्य श्री के संग में, उस समय तो छुल्लक जी अलग जी थे, मुनि महाराज जी तो फिर अरे दीक्षा के बाद उन्हीं दीक्षाएं हुई मेरे सामने, मैंने देखा छुल्लक जी अलग जी थे, तो समय सागर जी महाराज थे, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, तीन महाराज जी थे उस समय सन 78 में। तो समय सागर जी महाराज जो सबसे बड़े हैं, पहले सबसे पहले दीक्षित हुए, मुनि दीक्षा उनको सबसे पहले मिली। उनकी आदत में था कि अष्टमी चतुर्दशी को वो उपास करा करते थे, तो सप्तमी के दिन ले लेना पड़ता है गुरु की साक्षी पूर्वक कि कल चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर दूंगा, आज ही से कर दिया परसों तक के लिए, ऐसे करके लिया जाता। तो वो हमेशा लिया करते थे सप्तमी के दिन, सब बैठे थे हार के बाद, और उन्होंने कहा कि कल के लिए उपास लेता हूं। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, कल ऊनोदर कर लो, अनुदय कर लो, थोड़ा भोजन कम ले लेना, इच्छा से कम ले लेना, आधा पेट भोजन लेना, या कि एक ग्रास लेके वापस चले आना, या कि पूरा भोजन लेते समय एक ग्रास कम करके वापस चले आना। अभी और आकांक्षा थी एक ग्रास लेने की, लेकिन कम कर दिया, ऐसा कर लेना। नियम सागर जी महाराज कम उपास किया करते थे, जब उनने देखा कि आज तो उपास इनको भी नहीं मिल रहा है, तो अपन पहले से अमोदर मांग लो, तो उन्होंने कहा मैं अमोदर कर लूंगा, बोले तू उपास कर ले। किसे किसे क्या देना है, किसे किस तरह तपस्या करानी है, किसे किस तरह अपने अनाशक्ति सिखानी है, किसे किस तरह संयम सिखाना है, ये गुरु जानते हैं। इसलिए गुरु की साक्षी बहुत आवश्यक है तपस्या के लिए या कि संयम के लिए। इंद्रिय संयमन बहुत साधारण सी चीज है, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं, लेकिन अभिप्राय विशुद्ध रखना पड़ेगा, अभिप्राय परमार्थ का रखिएगा। कि बहुत तो खाया, आज ये चीज इतनी थोड़ी खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला, चार रसगुल्ले रख दिए गए हैं भाई दो अलग कर लो, आज तो दो ही लूंगा, हालांकि खा सकता हूँ चार ही लेकिन आज मन करता है कि दो ही लूंगा, अभी अभी इस दूध में एक चम्मच शक्कर डाल दी है बस रहने दो, मेरा चार चम्मच डाल के पीने का हमेशा मन करता है, आज एक ही चम्मच डाल के पी करके देखूंगा कैसा लगता है, आज नियमन करूंगा, आज संयमन करूंगा अपने खाने पीने की चीजें, और 10 जोड़ी कपड़े टंगे हुए हैं और रोज कपड़ों के सामने जाकर के सोचता हूँ कि कल कौन से पहने थे और आज कौन से पहन जाना है, तो आज ऐसा विचार न करूंगा, कल जो पहने थे वही पहन के चलूंगा, देखें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता कि आपने कौन से पहने हैं, लेकिन लगता यही है कि जैसे सब देख रहे हों कि कल भी तो पहने थे जी, आज कैसे पहन के आएंगे, ये सही मन है, ये अपने मन का सही मन है, अपने इंद्रियों का सही मन है, बस इसी का नाम तो अनुशासन, अपने निरंतर अनादिकाल के जो वासना के संस्कार है उन संस्कारों को ब्रेक करना, क्षण भर के लिए या कि पूरे जीवन भर के लिए, एक क्षण के लिए भी ब्रेक किया है आपने तो बहुत पुरुषार्थ किया है, ये संयम है, ऐसे संयम को बाहर भीतर सब तरफ से उत्पन्न करने की आवश्यकता है, और संयम ले लेने के बाद मैंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं करना, लोग क्या कहेंगे लोग क्या करेंगे, हाँ इतना अवश्य है कि लोगों को कहने का मौका ना मिले, हर संयमी व्यक्ति को इतना तो आवश्यक है कि वो अपने संयम को इस तरह से पालन करे कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसके ठीक ठीक चलने के बाद भी कोई अगर उंगली उठाता है तो उसकी चिंता ना करे, किसी के कहने से वो छोड़ ना दे अपने संयम को, ये भी किसी संयमी व्यक्ति के लिए आज जो संयम लेते हैं, और संयम में एक क्रम होना चाहिए, लोग किसी भी क्रम से ले लेते हैं, मैंने सुबह सुबह देखा और मेरे मन में अभी तक उस बात का ख्याल है, और वो बहन पता नहीं यहाँ बैठी कि नहीं, उनको बुरा लगेगा तो लग जाए, लेकिन उन्होंने मेरे से दशमी का व्रत लेना चाहा, लेकिन उनके चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी, मैंने कहा कि प्लीज मेरे से मत लीजिएगा व्रत, किसी और से ले लीजिएगा, या तो पहले लिपस्टिक छोड़ने का व्रत ले लीजिएगा फिर उपवास करिएगा, बिल्कुल सौ चूहे खा के हज करने चली, मैंने उनसे ऐसा कह दिया, मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ ऐसा मत करिए, एक तरफ तो मांसाहार सीधा सीधा मुंह में जा रहा और आगे का आसन करेंगे, ये कौन सा ढंग, ये ढंग नहीं होता व्रत लेने का, कल के दिन लोग जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि देखो तो ये दसवीं का व्रत कर रहे हैं और नेल ये लगाए हुए नेल पेंट्स लगाए हुए नहीं छोड़ पा रहे हैं, सौगंध नहीं ले पाए कि मैं छोड़ सकूंगी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन चीजों को हम जान रहे हैं, जिन चीजों में निरंतर हिंसा हो रही, जो चीजें मांसाहार से युक्त है उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, और फिर किस बात का व्रत कर रहे हैं, किस बात का संयमन कर रहे हैं, नहीं संयम का एक क्रम होना चाहिए, पहले मद्य मधु मांस से बचने की कोशिश करनी चाहिए संयम के दिन, हर एक जैन व्यक्ति को सप्त व्यसन का त्यागी तो होना ही चाहिए, वो चाहे जितना धर्म कर ले अगर वो कोई एक व्यसन भी करता होगा तो उसका धर्म करना कोई मायने नहीं रखता, उसका व्रत नियम संयम कोई मायने नहीं रख सकता, जो अपने जिनको की समाज अपराध मानती है उन अपराधों से जो मुक्त नहीं है वो अपने आत्मा के विकास के लिए और कौन से व्रत नियम संयम करना चाह रहा, वो काहे की दक्ष लक्ष्मी करेगा, वो काहे की समाप्त न करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करे, जो व्यक्ति पाउच खा रहे हैं उन व्यक्तियों को थोड़ा सोचना चाहिए कि पाउच में क्या पड़ा हुआ है, डॉक्टर चिल्ला रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं कि भाई बचिएगा इससे, उसमें छिपकली की पूंछ का जो एसेंस उसमें से निकाल करके वो डाला जा रहा ताकि आप एडिक्ट हो जाए ताकि आप छोड़ ना सके उसको निरंतर खाएं, और इसके बावजूद भी हम एक जरा सा पाउच के पीछे और पूरी जिंदगी नष्ट करने के लिए और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि नहीं हम तो दूसरा कोई संयम ले लेंगे, हम आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन नहीं किया आपने पाउच खा लिया, मतलब क्या हुआ, एक क्रम होना चाहिए ताकि लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले, एक दूसरी प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति अगर बाहर खड़े होकर के गाली देता है तो कोई कहेगा कि ये व्रती है और ये गाली देते हैं, तो उंगली उठाने का एक तो मौका नहीं देना, और अगर कोई उंगली उठाता भी है और हम अपने आप में सजग और सावधान है तो हमें पब्लिक ओपिनियन में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया पाप करने वाले व्यक्ति का समर्थन करती है, पुण्य वाले करने वाले व्यक्ति का विरोध करती है, बहुत कठिन है कि वो जो पुण्यात्मा का कोई समर्थन कर सके, पाप का समर्थन बहुत जल्दी हो जाता है, बेटा अगर रात 12 बजे तक टेलीविजन देखता है तो पिता कुछ नहीं कह सकता, और अगर 12 बजे महाराज जी की भैया वृत्ति करके लौटता है तो एक बार इशारा करता है कि जरा सावधानी से लौटा करे, ये क्या मचा रखा है, लेकिन 12 बजे अगर सेकंड शो देख करके लौटा है तो शायद कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बहुत बहुत मुश्किल का समय है, इस समय में जो है अगर आप सजग और सावधान होकर व्रत नियम संयम का पालन करते हैं तो किसी की चिंता मत करिए, लेकिन इतना जरूर है कि पब्लिक ओपिनियन तो किस्म किस्म के होंगे। शायद मैंने कभी आपसे भर्तरी की बात करी हो। भर्तरी के जीवन में ऐसा हुआ था, वो एक बार जब साधु हो गए तो अपने गांव वापस लौटे और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और एक पत्थर जो है मुड़ी से रख लिया था। तो उसी रास्ते से पनघट जाने वाली लाइन भी जाती थी, तो पनघट जो लोग जा रहे थे तो कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा देखो, कहले को आए जो कौन साधु आए, कहले भर्तू आए अपनो जो रखते। अब उनको तो भर्तरी जो है साधु भी हो जाए तब भी अपने भर्तू से ज्यादा थोड़ी लगता है। तो दूसरे ने कहा कहले हो तो गए साधु, मैंने कहले मुड़ी से नहीं छूटो, अब मुड़ी से थे पथरा रखे थे मुड़ी से की जगह, कहले मुड़ी से नहीं छूटो, हो तो गए साधु। साधुता नहीं दिखाई पड़ती, कमजोरियां दिखाई पड़ती। मजा ये है, साधुता देखने के लिए आंख चाहिए, कमजोरी देखने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो तो जब चाहे दिखाई पड़ सकती है। तो उनने भी सोचा कि भाई ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं, अब जब इतना संयम करा है तो इतना पत्थर का कोई विकार में रह जाए, तो धीरे से उठाया और बाजू में रख दिया और अपने आराम से हाथ में ऐसे लेट गए चुपचाप। अब वापिस लौटे वही लोग पानी वानी भर के, कहने देखो क्या नहीं कही थी हमने, टनक सी कह गई कि मुड़ी से धरे हैं, सो कहना फेंक दो गुस्सा में आने क्या। अब देखो अगर रखते हैं तो मुश्किल, अगर निकाल देते हैं तो मुश्किल, पब्लिक ओपिनियन में नहीं पड़ते। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया तो कभी अच्छे को अच्छा नहीं कहती, ना बुरे को बुरा कह पाती है, बुरे को एक बार बुरा कह भी दे फिर भी, लेकिन अच्छे को तो अच्छा कहने वाले मैंने बहुत थोड़े लोग देखे, बहुत थोड़े लोग, प्रशंसा करने वाले बहुत थोड़े लोग देखे, निंदा करने के लिए तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। इसलिए संयम ग्रहण करें। तो अगर आप पानी छान के पी रहे हैं रेलवे स्टेशन पर और कोई भगत जी आ गए तो आपको इंसल्ट फील नहीं करना चाहिए। इंसल्ट तो तब फील करना चाहिए जबकि कोई ये कहे कि काफी ये जे नहीं हो, बिना छनो पी लो, अरे नहीं चलता है सब, उस समय कोई इंसल्ट फील नहीं करते। जब रात में खा रहे हो और कोई अचानक व्यक्ति आगे कह देता है कि क्यों आप जैन साहब आप रात में खाते हैं, अरे चलता है सब कहा, वो तो उस समय की बात है जब अंधेरा अंधेरा रहा करता था तब लोग दिन में खा लिया करते थे, अब तो बहुत रोशनी आ गई, क्या मतलब, वो तो बहुत बैकवर्ड लोगों की बात है, हम तो अप टू डेट फॉरवर्ड लोग हैं। जैन साहब के हाथ में अंडा हो तो शर्म आनी चाहिए, जैन साहब बिना छना पानी पीते हो तो जैन साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं तो जैन अकेला के आदमी के हाथ में अगर हो तो आदमी अगर है उसको तो आदमी को तो रात में नहीं खाना चाहिए। पशु एक बार खाए जुगाली करे, दिन में खा करके फिर रात में जुगाली करे तो मान भी दूंगा, 100 बार सैकड़ों दफे मुंह मारे जहां तहां तो मैं मान भी लूंगा क्योंकि वो पशु के स्तर पर जी रहा है, लेकिन आदमी 100 दफे हर जगह मुंह मारे और जब चाहे तब मारे तब तो क्या मतलब हुआ उसका, 12 बजे रात को भी उठ करके कुछ भी खा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये संयम नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है। आज थोड़ी सी कड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि सुबह से जो है थोड़ा सा मन गड़बड़ा गया है, इसलिए कड़ी बात कह रहा हूँ। बहुत हंस तो लिया है अभी, एलक जी ने तो बहुत लाइट कर दिया मूड, लेकिन अभी भरा हुआ है वो कि इतनी सी लिपस्टिक नहीं छोड़ पाए, 2 महीने के लिए बहुत मुश्किल में उन्होंने छोड़ी 2 महीने के लिए, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि देखो मैं कभी नहीं कहता, आहार के समय कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए, आपकी मर्जी, लेकिन बेईमानी मत करिए। संयम के मामले में कम से कम सजग और सावधान रहिए, अपनी शक्ति तो विचारिए, अनंत शक्ति आत्मा के पास पड़ी हुई है और ये इंद्रिय के विषय और कषाय ये तो अनंत बार भी आप इनको अपने जीवन में पा लीजिएगा, इनसे कुछ भी नहीं। कितनी बार तो पहने होंगे कपड़े, कभी एक आध बार ठीक से पहन पाए कि उतारना ना पड़े, या ठीक से एक आध बार उतार पाए कि फिर से पहनना ना पड़े, ठीक से एक आध बार खा पाए कि फिर ना खाना पड़े, ऐसा हुआ? लेकिन इसके बावजूद भी क्या, आज तो ठीक से खाऊंगा, आज तो जैसे मैंने पहली बार खाया है ऐसे खाऊंगा, तो जरा सा सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दीजिएगा, लेकिन अनाशक्त तो होइएगा सब चीजों से। बड़ी सारी बातें हम संयम पर कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी होने के नाते जितना हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए और वो भी आत्मानुशासन होना चाहिए, वो आत्मानुशासन तो आप ला सकते हैं। और एक आदमी और एक कम से कम जैन होने के नाते बहुत मुश्किल से ये पर्याय मिलती है। कितना पुण्य का उदय होगा जब अपन मनुष्य बने हैं, और कितना पुण्य का उदय होगा कि ठीक ठीक जगह पैदा हुए हैं जहाँ संस्कार है, अन्यथा किसी शराबी के यहाँ पैदा हुए होते, किसी मांसाहारी के यहाँ पैदा हुए होते तो जीवन उसी में बर्बाद हो गया होता। लेकिन हमने कितनी कोशिश करके कितना पुण्य पूर्व जीवन में अर्जित करके ये चीज पाई और फिर सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य और फिर उसके बाद मन करता है उनके सानिध्य करने का, बड़ा अतिशय पुण्य मैं तो सोचता हूँ। कि उनके सानिध्य करने का बहुत सारे लोग होंगे जो अभी मौज मस्ती कर रहे होंगे, उनको सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलने के बाद भी उनको सानिध्य करने की आकांक्षा नहीं होती, आपको हुई है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा और जीवन में अपने अनुशासन करिए, अपने जो पूर्व के बुरे संस्कार हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करिए, क्षण भर के लिए ब्रेक करने की कोशिश करिए। एक माँ हमारे पास आई थी दुर्ग में, बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं सुना करके, मेरे पास घड़ी नहीं रखी आपने, फिर आप गड़बड़ में पड़ेंगे, मैं बहुत बोलता रहूंगा दिन भर, रख दीजिए कर मैं रुक जाऊंगा नहीं तो। आप लोगों का एकाशा ने दसवीं है इसकी है। अच्छा बस दो तीन मिनट और, आपका सवा चार लगभग बच गया। तो एक माँ हमारे पास दुर्ग में आई, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम सामायिक करेंगे। हमने कहा ले लीजिएगा नियम सामायिक, बोले 25 सामायिक का नियम ले लेते। 25 सामायिक का नियम लेते, हम तो 3 सामायिक करते हैं, 25 सामायिक आप कैसे करेंगे? मैं समझ नहीं पाया असल में। तो मैंने कहा आपके सामायिक का अर्थ क्या है? बोले कुछ नहीं, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ना, 1 सामायिक। अरे मैंने कहा फिर तो ठीक है, ले लीजिए 25 सामायिक, 9 बार नमोकार। मैंने कहा करेंगे कैसे? लेकिन बोले कुछ नहीं, देखा कि बेटा खाना खाने पे नहीं आ रहा है, हम वहीं पर अपना रख दिया, अब रोटी वोटी नहीं बेलना है, 1 सामायिक कर लेते हैं, 9 बार नमोकार, जब तक आएगा तो देख लेंगे, अगर अभी भी नहीं आ रहा है कोई खाने के लिए तो फिर 1 सामायिक कर लेंगे। संसार के कामों के बीच भी हम परमात्मा का स्मरण कर लेंगे, क्या ये संयम नहीं है? असंयम के बीच में से हमने कोई एक थोड़ा सा पीरियड अपने लिए निकाल लिया, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लिया। इतने व्यस्ततम जीवन में दुकान पर बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है तो इस बात की चिंता है कि बाजू सामने वाले की दुकान पर इतने ग्राहक, हमारी दुकान पे एक भी नहीं, आप जाके पूछने हैं, भगवान के सामने भी निवेदन करना है कि पूजा का मतलब क्या हुआ, इतने दिन से करते आए, दुकान ठीक से नहीं चलती। और उसी समय अगर ये विचार कर लिया होता कि सब अच्छा हुआ कि 5 मिनट मिल गए, अभी कोई ग्राहक नहीं है, जरा सारा मौका तो कर लो, बहुत अच्छा मौका मिल गया, कैसा नहीं सोच सकते दुकान पर बैठे बैठे। हजारों कामों के बीच में से भी अगर हम अपने आत्मा के विकास के लिए एक क्षण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन दृष्टि की बात है। अगर भीतर में मन विकसाए और तत्व का बोध हो गया होगा तो आदमी विरक्ति के लिए समय निकालेगा, फिर मजबूर नहीं है वो, आशक्त होने के लिए मजबूर नहीं है, अनाशक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें अपने जीवन में संयमित होने की करिएगा, क्रम से करिएगा, संयम क्रम से लीजिएगा। और भी अपने जीवन में एक और बहुत छोटी सी घटना आपको सुना दूं, बाहर भीतर दोनों तरफ से संयम धारण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर दिखावे के लिए हम संयमित हो गए हों और भीतर कोई प्रकाश ना हो हमारे जीवन में। ये आखिरी बात और आपसे कह दूं, ऐसा अक्सर होता है कि हम बाहर से बहुत अधिक संयमित मालूम पड़ते हैं लेकिन भीतर हमारे अंदर संयम के प्रति कोई आस्था नहीं होती, संयम के प्रति कोई ईमानदारी नहीं होती। एक घटना हुई थी, एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा भारी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और जो लाइन मैन था जो रोशनी दिखाता था उसको अदालत में बुलाया गया और वकील ने पूछा कि बत्ती दिखाने वाले तुम ही थे? उसने कहा जी हुजूर, नहीं बत्ती दिखाता। जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी रेलवे फाटक तब तुम वहां थे? जी हुजूर था। जब ट्रेन निकली तब तुमने बत्ती हिलाई थी? जी हुजूर हिलाई थी। फिर से सोच लो, बत्ती हिलाई थी? जी हुजूर बत्ती हिलाई थी। 100 दफे पूछा, अलग अलग ढंग से पूछा। उसने कहा हुजूर बत्ती हिलाई थी, आप रात 12 बजे भी पूछोगे मेरे से सोते सोते तब भी मैं कहूंगा बत्ती हिलाई थी नहीं, मैं लाइन मैन हूं, इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर सकता हूं कि ट्रेन निकले और बत्ती ना हिलाऊ, मेरा काम ही है। अब जो रेलवे मास्टर था उसकी तो धक धक हो रही थी कि अगर इसने कुछ और कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन रफा दफा हो गया, केस के साथ किसी की गलती नहीं है, वो तो ट्रेन एक्सीडेंट होना था, हो गया, क्योंकि लाइनमैन कह रहा है कि उसने तो बत्ती बाकायदे दिखाई थी। जब बाहर निकला वो तो रेलवे मास्टर ने बहुत पीठ थपथपाई कि तू तो बिल्कुल नहीं घबराया, कहता हुजूर घबराने की बात ही नहीं थी, वो पूछे ही ऐसा रहे थे। वो अगर ये पूछते थे कि बत्ती जली है कि नहीं जली तो फिर गड़बड़ हो जाती। वे तो जय पूछ रहे थे कि बत्ती हिलाई थी कि नहीं, बत्ती तो हमने हिलाई थी, जली हुई चाहे जली हुई इससे क्या बस। भीतर रोशनी हुई है कि नहीं हुई है, हमने बाहर से सारी क्रियाएं करी हैं, तो बाहर से सारी क्रियाएं कर लेने के बाद भी अगर अंतरंग में कहीं कोई रोशनी आत्म विकास का कोई अभिप्राय जागृत नहीं हुआ है अपने आत्म कल्याण का, तो वो ऐसे ही बत्ती दिखाने जैसा है, एक्सीडेंट होगा उसके बावजूद भी कि आप बाहर से बहुत संयमित है। इसलिए जीवन में सावधानी रखें, बाहर भीतर दोनों तरफ जितना बने उतना, अपनी शक्ति को देख करके अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना अपने जीवन में संयम लाने की कोशिश करें। आज तो संयम का दिन है, एक दिन के लिए ही अपने जीवन को संयमित बनाए, और एक छोटा सा क्षण भी अगर हमारे जीवन में संयमित होगा तो वो बहुत आगामी जीवन के लिए संयमित करने में सहायक होगा। ऐसी भावना के साथ में हम सब जीव लोग अपने आत्म कल्याण के लिए संयमित हों। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।